ये तो हुई हुल्लड़ जी के घर की बात। और अब सुनिए गंगाराम की कहानी। गंगाराम एक मध्यम वर्गीय आदमी है जो जिंदगी के गम को शराब में घोलकर पी जाना चाहता है। उसकी कहानी क्रिकेट कमेंट्री के रूप में सुनिए।
लीजिए ये कविता कमेंट्री सुनिए। गंगाराम के घर में क्रिकेट। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में मधुर मधुर बरसात और उस पर गजब ठाती हुई चांदनी रात। विकेट बहुत अच्छी है। गंगाराम ने सोडे का ऑर्डर दे दिया है और वो सोडे का इंतजार न कर सके तो पानी के साथ पहले ओवर का पहला पैक पी लिया है। गंगाराम को एक रन मिल गया है। अब तक गंगाराम 4995 पैक पी चुके हैं, जिसमें 12 बोतल कच्ची और 13 बोतल उधार की रम भी शामिल है। 5000 पैक पूरा होने में केवल 5 बैग बाकी हैं। गंगाराम ने दूसरा पैक उठाया, दूसरा पैक का पहला सिप लेकर उन्होंने बच्चे के चपत मार दी है। बच्चा रोता हुआ घर से बाहर चला गया है और गंगाराम को 4 रन और मिल गए। गंगाराम ने तीसरा पैक उठाया तो पत्नी से कहा, तुम अपने आप को समझती क्या हो, खाना क्यों नहीं बनाया। पत्नी ने उन्हें बेलन दिखाया। गंगाराम एलबीडब्ल्यू होते होते बचे हैं। गंगाराम ने चौथा पैक उठाया। पत्नी ने कहा, कल बच्चों की फीस जमा करानी है और मकान की किस्त भी भिजवानी है। गंगाराम ने इस गेंद को नहीं खेला। वो बुरी तरह हांफ रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और बरसात के कारण खेल थोड़ी देर के लिए रुक गया है। गंगाराम ने पांचवा पैग बिल्कुल नीट चढ़ाया, जोर जोर से होहल्ला मचाया। मोहल्ले वाले आ रहे हैं, गंगाराम चिल्ला रहे हैं। पत्नी ने बाउंसर फेंका। लड़की जवान हो गई है, उसके दहेज के लिए कुछ सोचा। गंगाराम ने गुस्से से गिलास पत्नी की तरफ फेंक कर मारा। पत्नी ने गिलास कैच कर लिया है और गंगाराम आउट हो गए हैं। आज का आदमी जिंदगी की दौड़ में आंखें बंद करके तेजी से भाग रहा है, लेकिन मुसीबत यही है कि आज भी वो वहीं का वहीं है। मैं आपको 8 नमूने दिखा रहा हूं, तो जैसे वो 7 सहेलियां सुनी होंगी, ये 8 नमूने हैं, तरह तरह के नमूने हैं। अब लोगों की आदत होती है, वो आदत कभी बदलती नहीं जिंदगी में। एक सर्जन को मैंने देखा कि वो ऑपरेशन टेबल के नीचे बैठकर औजारों का प्रयोग करते थे। नीचे बैठ के ऑपरेशन कर रहा है तो पूछ ही लिया मैंने। मैंने कहा साहब, बहुत से मैंने सर्जन देखे लेकिन ऐसा सर्जन तो मैंने नहीं देखा। क्या बताऊं आपसे, इससे पहले मैं मोटर मैकेनिक था। तो एक और हमारे मित्र हैं, गायक हैं, गाना गाते हैं, तो वो स्टेज पर जब भी प्रोग्राम देते हैं तो जब गाना गाना शुरू करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं अपनी। तो मैंने 2-3 दफा उनका प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा भाई यार पूछना ठीक नहीं, लेकिन जब उन्होंने इस बात को 6-7 जगह रिपीट किया तो फिर एक दफा मैं पूछ ही बैठा। मैंने कहा भाई साहब, जब आप गाना शुरू करते हैं तो आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। बोले बात यह है कि मुझसे पब्लिक का दुख देखा नहीं जाता। तरह तरह के मतलब नमूने हैं। एक हमारे दोस्त हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो तो वो एक दफा कोर्ट गए, कचहरी गए, तो वहां पहुंचे तो देखा तो हाथ में घड़ी नहीं, तो घड़ी घर पे भूल आए थे। तो अपने वकील साहब से मित्र थे, उनसे कह रहे थे, बोले यार आज घड़ी भूल आया। तो वो दो आदमी वहां खड़े थे, वो सुन रहे थे। इत्तफाक की बात, उनमें से एक जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के घर पहुंच गया। बोले साहब, वो ऐसा है कि ये मजिस्ट्रेट साहब ने 2 मुर्गे भेजे हैं, उनको आप बना लें, और ये घड़ी मंगवाई है उन्होंने, वो घर पे भूल गए थे। तो उनकी बीबी ने घड़ी दे दी, वो आदमी घड़ी लेके चला गया। अब शाम को मजिस्ट्रेट आए तो उनकी बीवी ने कहा कि देखिए मेरी तो तबीयत वैसे ही खराब चल रही है और आपने मुर्गे भेज दिए बनाने के लिए, नॉनवेज ही खाना था तो शाम को कहीं और होटल में खा लेते। बोले कैसे मुर्गे? बोले वो आप घड़ी भूल गए थे ना, घड़ी मंगवाई थी और साथ में मुर्गे भेजे थे। बोले मैंने तो कोई मुर्गे नहीं भेजे। तो बोले फिर बोले ठीक है, उन मुर्गों को वैसे ही रखो, मैं सबूत के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो अगले दिन कचहरी पहुंचे तो फिर दोपहर को एक आदमी पहुंच गया उनके घर। बोले साहब, वो दोनों आदमी पकड़े गए, वो चोर पकड़ लिए, वो सबूत के लिए मुर्गे मंगाए। तो साहब वो घड़ी भी ले गया और मुर्गे भी ले गया। तो तरह तरह के नमूने। एक साहब बंबई में आते हैं हमारे यहाँ, तो अपनी कुछ कहानियां सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, वो सुनाएंगे, तो बोलते चले जाते हैं। तो मैं उन्हें बिल्कुल चिपक कहता हूँ। तो आते हैं तो अब उनका अंदाज भी बड़ा अलग है। जैसे उनको चाय मांगनी है तो मैं उनसे कहूंगा, पूछता हूँ कि साहब ठंडा लेंगे क्या गर्म लेंगे, तो कहेंगे पर्वतो उत्पन्न दुग्ध शर्करा मिश्रित वाष्पशील पेय लाओ। मैंने कहा क्या बात, समझा नहीं मैं। बोले बात यह है कि मेरी दुई चक्र का कि अग्र चक्र के अंत चक्र में सूक्ष्म सा छिद्र हो गया है। अब पंचर के बारे में कह रहे हैं तो बहुत अजीब आदमी, 5-6 घंटे पहले से पहले तो उठता ही नहीं वो आदमी, सुनाया चला जा रहा है हीरो ने ये किया, फिर हीरोइन वहां भागी, फिर विलन उसके पीछे भागा। अब मैं बहुत परेशान, और 6 घंटे के बाद वो आदमी कहता है मुझसे, बोले साहब आपसे मिलके बड़ा मजा आता है, टाइम कैसे गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। तो मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने कभी हमारी राय भी पूछ लिया करो। आइए और कुछ नमूने आपको। मैं वहां रहता था मुरादाबाद में, तो पास में एक गांव में एक ग्वाला गडरिया रहता था, तो गाय भैंसे भेड़े बकरियां सब पाल रखी थी उसने। तो मैं उसको हमेशा ही एक बात कहा करता था, देखो भाई जिंदगी में मन अगर आदमी का शुद्ध नहीं है तो उसका कोई भी कार्य ढंग से नहीं होता। लेकिन अब वो बात कहां याद रहती है आदमी को, तो उसके जानवर अल्टरनेट डेज पे बीमार होने लगे। मतलब गाय को ठीक करे तो भैंस बीमार, भैंस को ठीक करे तो बकरी बीमार, बड़ा परेशान। तो एक पंडित जी के पास गया, बोले साहब पंडित जी कोई तरकीब बताइए, मेरे जानवर बीमार हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ऐसा करो तुम शुद्ध मन से रामायण पढ़ो। बोले साहब मन तो मेरा शुद्ध है नहीं, लेकिन रामायण जरूर पढ़ूंगा। तो पहला अध्याय पढ़ा तो गांव से खबर आ गई, बोले भैंसे सब खत्म। दूसरा अध्याय पढ़ा, गाय खत्म, तीसरे में भेड़े खत्म, मतलब 7 दिन में सारा टंडीला साफ। अब बड़ा परेशान दुखी वो आदमी, खाना भी नहीं खाए। तो गांव के चौधरी ने कहा भाई खाना तो खा लो, अब जो होना तो हो गया। बोले साहब नहीं मैं खाना नहीं खाऊं। बोले हमारे गांव में कोई आदमी भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, खाना तो खाना पड़ेगा तुम्हें। अब जबरदस्ती की थाली सजाई गई, बैठा वो खाना खाने, तो एक मेमना आया और उसने थाली में पैर रख दिए। बहुत गुस्सा आ गया उस आदमी का, बोले क्यों बे खाना भी नहीं खाने देगा, उठाऊं रामायण? अबे एक चौपाई का भी तो नहीं है। हाँ तो एक नमूना और आपको दिखा रहा हूं। एक हमारे मित्र हैं, वो पत्नी से जरा परेशान रहते हैं, पत्नी मोटी और काली है, तो हमेशा उनका झगड़ा भी होता रहता है। तो एक दिन आए तो मुझे अपनी कहानी सुनाने लगे, बोले यार बस क्या बताऊं मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा वो तो तुम्हारी रोज की बात है। बोले हमें एक शादी में जाना था तो मैं झगड़ा करके आके पार्क में बैठ गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले वो मैं बैठा हुआ था तो एक लड़की ने वहां मुझे देख कर सीटी बजाई। मैंने लड़की ने सीटी बजाई? बोले हाँ आजकल यही चल रहा है बम्बई में। तो बोले मैंने लड़की को बुलाया, लड़की मेरे पास आ गई, तो उन्होंने कहा कि कहीं चलेंगे घूमने? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो उसने कहा कि भाई देखिए मनोरंजन के लिए 500 रुपये खर्च होंगे। मैंने कहा भाई 500 रुपये तो मेरे पास है नहीं, 100 रुपये दे सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर? बोले साहब उसने इनकार कर दिया। मैंने कहा अच्छा किया। बोले फिर शाम को मैंने क्या किया, अपनी बीबी को लेकर उस शादी में पहुंच गया। इत्तफाक से वो लड़की भी किसी के साथ उसी शादी में थी। बोले मेरी बीबी की तरफ देख कर बोली 100 रुपये में तो ऐसी मिलेगी। तो तरह तरह के नमूने। एक और है हमारे दोस्त हैं, उनका तकिया कलाम है इससे भी बुरा हो सकता था, यानी कोई बात उनसे कहो बोले इससे भी बुरा हो सकता था। मैंने कहा यार वो उस आदमी की उंगली कट गई बेचारे की, एक्सीडेंट हो गया, तो कहने लगा पूरा हाथ ही कट जाता तो क्या होता, इससे भी बुरा हो सकता था। अब बिल्डिंग में आग लग जाए तो बोले साहब 2 माला तक आग लगी, बोले पूरी बिल्डिंग जल जाती तो क्या हो जाता, इससे भी बुरा हो सकता था। तो हर बात में वो यही बात निकाल लेता था। हमने कहा इसको ऐसी एक बात सुनाई जाए जिस पर ये बोल ही ना सके कि इससे भी बुरा हो सकता था। तो हमारे पड़ोस में एक ट्रेवलिंग एजेंट रहता था, तो वो ट्रेवलिंग एजेंट कहीं टूर पे गया हुआ था, तो वो 2 दिन पहले वापस आ गया। वापस आया तो देखा कि तो उसकी पत्नी किसी से अपने इश्क फरमा रही है, आलिंगनबद्ध खड़ी है। तो उसने साहब पिस्टल निकाली और उस आदमी को गोली मार दी और बीबी को भी गोली मार दी, दोनों मर गए। अब ये किस्सा जब हमने उसे सुनाया तो फिर बोला इससे भी बुरा हो सकता था। अरे मैंने कहा इससे बुरा क्या हो सकता था यार, दोनों को मार दिया, खुद जाकर कोर्ट में हाजिर हो गया, अब इससे बुरा क्या हो सकता था। बोले ये घटना 2 दिन पहले घटती तो उस आदमी की जगह मैं मारा जाता। देखिए वक्त वो आ गया है कि आप भले का भी काम करें तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे अब गलती तो कई की और बनवास मिला राम को। तो एक जेलर साहब थे, बेचारे दूसरों का भला करने में आगे रहते थे। तो तो कैदियों ने उनसे कहा कि साहब हम रामलीला खेलना चाहते हैं। बोले जरूर खेलो भाई, ये तो बड़ी अच्छी भावना है कैदियों के मन में इस प्रकार धार्मिक भावना का उदय हो, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। तो उन्होंने आज्ञा दे दी। तो कैदी बोले साहब एक हमारे सामने समस्या है कि लक्ष्मण का रोल करने वाला कोई नहीं, तो वो आप कर दीजिए। जेलर साहब ने कहा ठीक है हम कर देंगे। तब वो सीन ये था कि वो अपने लक्ष्मण बेहोश पड़े और वो चल रहा है अपना रामलीला का प्रोग्राम। अगले दिन जेलर साहब बैठे हुए रो रहे हैं, तो किसी ने पूछा भाई रो क्यों रो? बोले क्या बताएं यार, वो हनुमान जी जो बने थे वो बूटी लेने गए हुए थे, आज तक नहीं लौटे।
हुल्लड़ जी, मुर्गी, मुर्गा, वकील, अदालत, खून सब हो गया सब, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया हुल्लड़ जी के साथ क्या हुआ।
अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे बारे में आप पूछ रहे हैं। तो जिनको मैं नमूना बता रहा हूँ भाई साहब, वो मुझको नमूना बताते हैं। तो मैं बंबई में बैठा हुआ, तो एक महत्वाकांक्षी सज्जन हमारे घर पधारे। महत्वाकांक्षी उनको कहते हैं कि कोठी, बंगला, कार, बैंक बैलेंस वगैरह सब हो। तो घर पधारे, मुझसे पूछा हुल्लड़ जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, आराम से बैठा हूँ। बोले अजीब आलसी आदमी हो यार, कुछ काम करो। मैंने कहा क्या काम करूं? बोले बंबई में रहते हो, फिल्मों में काम करो। मैंने कहा उसके बाद? बोले और फिल्मों में काम करो। मैंने कहा उसके बाद? बोले अपनी फिल्में बनाओ। मैंने कहा उसके बाद? बोले बैंक बैलेंस बढ़ाओ। मैंने कहा उसके बाद? बोले इंडस्ट्री लगाओ। मैंने कहा उसके बाद? बोले विदेशों में ब्रांच खोलो। मैंने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद आराम से बैठो। मैंने वही तो कर रहा हूँ। जिस जगह आदमी 20 साल के बाद पहुंचता है, वहां हम कभी लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। तो जब मैं शुरू शुरू में बंबई पहुंचा था, तो वहां रहने की बड़ी किल्लत थी, मकान वहां मिलता नहीं है। खैर वहां पहुंच गए तो मैंने एक तरबूज लिया और जुहू के किनारे तरबूज लेके बैठ गया और मैंने चलो आज तरबूज खाते हैं। तरबूज पर चाकू मारा तो उसमें से एक चीन निकला।
क्या हुक्म है मेरे आका? अरे मैंने भैया तू कहां से आ गया?
बोले हुक्म दीजिए आप। मैंने कहा भाई हुकुम क्या यार, रहने की जगह नहीं है, तुम बंबई में दो कमरों का एक फ्लैट दिला दो गुरु, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी। तो वो जिन हंसा, बोले बंबई में रहने की जगह होती तो मैं क्या बेवकूफ हूँ जो इतने साल से इस तरबूज में पड़ा। तो मित्रों, ये जिन मुझसे ही नहीं टकराया, एक प्रोड्यूसर से भी टकरा गया। आपको सुना रहा हूं ये सस्पेंस कविता, प्रोड्यूसर और जिन। एक प्रोड्यूसर की पांचवी फिल्म भी जब सुपर फ्लैप हुई तो उसका सर चकरा गया, आत्महत्या के लिए जुहू आ गया। आत्महत्या के लिए जुहू आ गया, समंदर में जैसे ही छलांग लगाई एक बोतल उसके शरीर से टकराई। उसने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला उसमें से एक जिन निकलकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? प्रोड्यूसर बोला, तुम्हारे जैसे कई जिन मैंने फिल्मों में दिखाए, आप वहीं चले जाइए जहां से आए, आप वहीं चले जाइए जहां से आए हैं। जिन बोला, मैं फिल्मी नहीं हूं, इल्मी जिन हूं, वायदा निभा दूंगा, जो भी हुक्म देंगे करके दिखा दूंगा। प्रोड्यूसर बोला, ऐसा है तो जाओ मेरे लिए 5 बोतल स्कॉच लेकर आओ, और साथ में जाने जाना कोई चुलबुली सी बुलबुल भी लेते आना, चुलबुली सी बुलबुल भी लेते आना। जिन ने 5 सेकंड में सब हाजिर करके निर्माता की तरफ ताका, अब क्या हुक्म है मेरे आका? निर्माता सोचने लगा, ये जिन यहां से जाए तो अपन बुलबुल से मन बहलाए। प्रोड्यूसर बोला, जाओ और नाइजीरिया से 50 फुट लंबा जिराफ, अफ्रीका से शेरनी का दूध और ऑस्ट्रेलिया की काली भेड़ के सफेद बाल लेकर आओ। उसने सोचा ये फॉरेन कंट्री जाएगा तो 1 हफ्ते से पहले तो क्या ही वापस आएगा, 1 हफ्ते से पहले तो क्या ही वापस आएगा और अपन बुलबुल के साथ मजे उड़ाएगा। प्रोड्यूसर तो लेकिन गश खा गया, वो तो सारी चीजें लेके 5 मिनट में ही आ गया, सारी चीजें लेके 5 मिनट में ही आ गया। अचानक निर्माता के दिमाग में आइडिया आया, उसने हुक्म सुनाया, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता ढूंढ कर लाओ जो राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हो, जो महात्मा गांधी जैसा ईमानदार हो, जो मदर टेरेसा के समान गरीबों का मददगार हो, जो औरों के लिए विष पीता हो, जो अपने लिए नहीं देश के लिए जीता हो, अपने लिए नहीं देश के लिए जीता हो। पूरे 5 साल हो गए, जनाबे जिन वापस नहीं आ रहे। पूरे 5 साल हो गए जनाबे जिन वापस नहीं आ रहे हैं, और प्रोड्यूसर साहब अब भी बुलबुल के साथ मजे उड़ा रहे हैं।
प्रोड्यूसर साहब अब भी बुलबुल के साथ मजे उड़ा रहे हैं। देखिए रात जब आदमी सोता है सपनों में कभी कभी सत्य मिल जाता है।
सपने सपने से पहले वो जीन कहाँ चला गया चुलबुली वाला?
वो तो गया।
ये रचना मैं आपको सुना रहा हूं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अर्थात सपना। सुनिएगा, यहां पर जब सुख वास्तविक नहीं तो दुख भी वास्तविक नहीं है। एक मजदूर का इकलौता बेटा मरण शैया पर पड़ा था। इलाज के लिए पैसे नहीं थे इसलिए बचना असंभव था। पिता की आंखों से आंसू बहते रहे और क्या करते बेचारे सहते रहे। रात को 3 बजे उन्हें नींद की झपकी आई और वो सो गए, सपनों की दुनिया में खो गए। सपने में उन्होंने देखा कि लाखों की संपत्ति के मालिक हो गए, कोठियां हैं, मिले हैं, कारें हैं, बहारें ही बहारें हैं, फूलों की शैया पर लेटे हैं और उनके 12 बेटे हैं, सबके सब विद्वान और आज्ञाकारी, इंजीनियर, डॉक्टर और अधिकारी। ऐसा सपना देखते देखते बेटा मर गया। पत्नी ने दहाड़ मारकर जगाया लेकिन बेटे की मौत पर मजदूर की आंख में एक भी आंसू नहीं आया। पत्नी ने कहा रोते क्यों नहीं? बोला किस किस के लिए रोऊं, 12 अभी थे वो मर गए, उनके लिए रोऊं या इसके लिए रोऊं? जैसे 12 गए वैसे 13 गए, न वो सब अपना था न ये सब अपना है, वो रात का एक सपना था ये दिन का एक सपना। तो मैं एक रचना आपको सुनाऊं, ये बनी कैसे? असल में क्या था कि एक लड़की वाले के यहाँ प्रोग्राम था, लड़की की शादी थी उसकी, तो प्रोग्राम में उसने पेमेंट नहीं किया, तो वो सारे साथी आके मेरे से बोले यार इसने पेमेंट नहीं किया अब क्या करें? तो मैंने कहा ठीक है विदाई के मौके पे चलते हैं और ये कविता सुना देते हैं। तो विदाई के मौके पर हमने जो रचना सुनाई, आपसे भी विदाई ले रहे हैं तो वो रचना मैं सुना रहा हूं। शीर्षक है ढोलवती एंड पोलवती। इसका जरा स्टाइल देखिए और इसकी स्पीड देखिए इस रचना की। ढोलवती की छोटी लड़की पोलवती का किस्सा सुनिए, किस्सा तो है काफी लंबा उसका पहला हिस्सा सुनिए। उस लड़की की सूरत बिल्कुल कलियों जैसी, आदत पर छिपकलियों जैसी, फैशन की वो एफिल टावर, शंगारों में पद्मश्री थी, होलसेल में इश्क लड़ाना उसकी हॉबी में शामिल था। होलसेल में इश्क लड़ाना उसकी हॉबी में शामिल था, इसी वजह से लड़के उसको मिस दिल फेंक कहा करते थे। पोलवती के पीछे पीछे प्राणी फिरते मारे मारे, जो वोटर के पीछे नेता, नेताजी के पीछे मोटर, मोटर जी के पीछे झंडा, झंडे जी के पीछे पीछे चंद फालतू और पालतू पूंछ हिलैया। हाँ हाँ भैया कहने वाले नारे नारे वाचक निपट निरक्षर एंड निखट्टू, सबके सब भाड़े के टट्टू, यानी चमचे, यानी चमचे। पोलवती थी बहुत काइया, रोज योजना समझाती थी, यहाँ मिलूंगी वहां मिलूंगी लेकिन झांसा दे जाती थी, लेकिन झांसा दे जाती थी। कहती कुश्ती करती कुश्ती, पूरी फिल्मी हीरोइन थी। एक बात थी लेकिन उसमें धर्म कर्म की पक्की थी, वो गीता रोज पढ़ा करती थी। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, कि जैसे मानव कपड़े बदले और आत्मा तन को बदले, उसी तरह से वो हर हफ्ते प्रेमी नया बदल देती थी, उसी तरह से वो हर हफ्ते प्रेमी नया बदल देती थी। लेकिन परसों मैंने देखा वो मंडप में सजी हुई थी, यानी उसका ब्याह हुआ था, और विदाई के टाइम पर अपना धीरज खोती थी वो, जोर जोर से रोती थी वो। पोलवती के डैडी उसको जाते थे, तू क्यों रोवे हरी बेटी, जिसके घर तू जा रही है वो रोएगा।
हुल्लड़ जी आपकी नाइट तो बिल्कुल खत्म होने को हो रही है, हैं आखिरी घड़ियां सुइयां, लेकिन जाते जाते क्या सुनाएंगे?
जाते जाते बस इतना ही कहूंगा सुनने वालों से और कमिटोनी जी से कि सबको नमस्कार प्रणाम और करते रहिए प्राणायाम।